जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन
जय राधे जय कृष्ण जय
श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री यमुना मैया की श्री यमुना मैया श्री वृंदावन धाम का एक अविभाज्य अंग है। इसका उगम भगवान के दिव्य धाम में हुआ है, गौलोक धाम में। जब भगवान ने गौलोक धाम का निर्माण किया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, द टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जब उसका निर्माण किया तो उसके बाद में भगवान के बाएं अंग से राधा रानी का निर्माण हुआ, दाएं अंग से ग्वाल बालों का निर्माण हुआ और राधा रानी के द्वारा सब गोपियों का निर्माण हुआ। इस तरह से गौलोकवासी सब निर्माण हुए। और जब राधा रानी और गोपियों के साथ में भगवान ने सबसे पहली बार गौलोक में रास रचाया, रास नृत्य बनाया, रास नृत्य संपन्न किया, उस समय भी भगवान के और राधा रानी के और गोपियों के शरीर में से दिव्य स्वेद निर्माण हुआ, डिवाइन फ्रेग्रेंट वाटर्स, और वो उनके शरीर से निकलकर एक जगह इकट्ठा हो गया। इतना प्रकाशमान दिव्य सुगंधी जल था वो, जिसका दर्शन करने जब राधा रानी पहुंची वहां पर कृष्ण के साथ में, तो उस सुंदर जलाशय का दर्शन करके राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा कि ये जलाशय जो है वो इतना आकर्षक है, इतना दिव्य है, इतना तेजस्वी है, इतना प्रकाशमान है कि इसको नदी का स्वरूप देना चाहिए। तो राधा रानी की इच्छा से उस जल को नदी का स्वरूप दिया गया और नदी प्रवाहित हो गई, वो जलाशय प्रवाहित होकर नदी का रूप धारण किया और वही यमुना देवी है। इस प्रकार से गौलोक धाम में यमुना का निर्माण हुआ। और जब पृथ्वी से ब्रह्मा जी आए, पृथ्वी गाय बनकर ब्रह्मा जी के साथ में देवताओं के साथ में गौलोक में आए, तो भगवान हरि प्रकट हो गए वहां पर। और भगवान ने प्रकट होकर सबको वादा किया, आप निश्चिंत रहो, मैं राक्षसों का विमोड़ करने के लिए, संतों को आनंद देने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए फिर आ रहा हूं। तो जैसे ही ये सुना मैं आ रहा हूं, तो राधा रानी बेहोश हो गई। फिर भगवान ने उसको जगाया और पूछा, आप क्यों बेहोश हो गए, क्या हुआ ऐसे? मैंने सुना कि आप जाने वाले हो पृथ्वी पर, तो मुझे आपका विरह होगा, इस विचार से ही मुझे दुख हो गया। तो मैंने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं आपको बिना नहीं जा रहा हूं वहां पर, मैं आपको लेकर ही जाऊंगा, मेरा अवतार का वादा जो है वो आपके साथ में है, आप मेरे संग चलेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊंगी। जिस जगह पर श्री वृंदावन, यमुना और गोवर्धन नहीं है, वहां पर मैं नहीं आ सकती। इतना राधा रानी वृंदावन, गोवर्धन, यमुना पर प्रेम करती है। तब भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि जैसे ही मैंने पृथ्वी पर अवतार लेने के बारे में सोचा, उसी समय गौलोक का 84 कोस का हिस्सा पूरे गोवर्धन और पूरे यमुना के साथ मैंने नीचे भेज दिया है। मेरे आने के पहले ही मैंने वहां पर वृंदावन धाम को पृथ्वी पर स्थापन किया है। इस तरह से यमुना देवी राधा रानी को कितनी प्रिय है उसका अंदाज हम लगा सकते हैं। उसके बिना राधा रानी रह नहीं सकती। तो जब यमुना देवी को भगवान ने आदेश किया कि आपको जाना है पृथ्वी पर, तो इतना सुंदर वर्णन है उसका गर्ग संहिता में, 1,00,000 पहियों के दिव्य स्वर्ण के बने हुए रत्नों से जड़ित रथ में यमुना जी सवार हो गई। यमुना जी की बहुत सारी हजारों सखियां भी उसमें बैठ गई। उसमें कई हजारों लाखों स्वर्ण रत्न जड़ित घंटाएं लगी हुई थी। उसमें बैठकर अपने सखियों के साथ में यमुना जी गौलोक से निकली हैं और गौलोक पार करते हुए, वैकुंठ पार करते हुए विरजा नदी के पास में आई हैं। विरजा को पार करते हुए ब्रह्मालोक में प्रवेश किया है और ब्रह्मालोक से फिर नीचे उतरते 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 वो पृथ्वी पर प्रकट हुई है। ये उनका आगमन का, प्रकट होने का एक लीला है। लेकिन वो नदी नहीं है, वो देवी है, स्वयं व्यक्ति है वो, शी इज अ पर्सन, यमुना देवी है वो। तो वो पृथ्वी पर कैसे प्रकट हुई कि सूर्य देव जो थे ना हमारे, अभी अस्त हो गया उनका, सूर्य देव जो विवस्वान, उनका विवाह उषा देवी के साथ में हुआ। बड़ी रोचक कथा ये। हमारे मेडिकल साइंस में गर्भधारणा होती है ना, कंसेप्शन ऑफ बेबी, तो हमारे स्पिरिचुअल साइंस में कहते हैं कि जो चेतना माता पिता की गर्भधारणा के समय होती है, वही चेतना का बालक गर्भ में प्रवेश करता है। वॉट एवर कॉन्शियसनेस, मूड, भाव वी हैव ड्यूरिंग अवर कमिंग टुगेदर, द सेम भाव इज अट्रैक्टेड इन द वूम एज अ सोल। उसी प्रकार का सोल जो है वो आत्मा में, आत्मा गर्भ में प्रवेश करके गर्भधारणा होती है। तो उषा देवी जो थी ना, बहुत टेंशन में थी कि मेरे होने वाले पति इतने तेज वाले हैं, सो ब्रिलियंट एफलजेंट ही इज, कैसा होगा मेरा उनके साथ में। तो पहली बार जब संबंध हुआ उनका, तो बहुत ही वो चिंतित थी कि इतने सारे तेज को मैं कैसे सहन कर पाऊंगी, और डर के उनका संबंध हुआ। उस संबंध के बाद में सूर्यदेव कहे, बोले कि इस संबंध से जो पुत्र होगा उससे पूरा विश्व डरेगा, क्यों आपने डर डर के मेरे साथ संपर्क किया है, इसलिए ऐसा पुत्र होगा जिसमें, जिससे पूरा विश्व डरेगा। बताइए ऐसे कौन सी व्यक्ति है जिससे सब लोग डरते हैं? यमराज। तो सूर्यदेव उषा देवी के पहले पुत्र का नाम यमराज है। यमराज महाभागवत है, भगवान के परम भक्त है वो। लेकिन सब लोग अच्छा अच्छा काम करेंगे तो बुरा काम कौन करेगा? हाँ, सम अनप्लेजेंट टास्क somebody has to do it ना, तो यमराज वो करते हैं। फिर अगली बार थोड़ा सा वो यूज टू हो गए ना अपने पति से, तो अगली बार जब संपर्क हुआ तो इतना एंग्जाइटी नहीं थी, बड़े प्रेम से संबंध हुआ। तो सूर्यदेव ने कहा इस बार जो संतान होगी वो कन्या होगी, और ये कन्या के संपर्क में जो आएगा वो बड़े पुत्र के भय से मुक्त हो जाएगा, एंटीडोट। और वो है यमुना देवी। यो यमुना देवी नदी रूप में होगी, इसके जल में जो भी स्नान करेगा वो बड़े भाई के भय से मुक्त हो जाएगा, ऐसा यमुना देवी का महात्म्य है। और तीसरा पुत्र हुआ उनका, उनका नाम क्या है? शनिदेव। वो सूर्य के पुत्र हैं, वो भी एक बहुत ही अनप्लेजेंट काम करते हैं भगवान की सेवा में, वो भी भगवान के परम भक्त हैं, उनकी भी बहुत सुंदर कहानी है। एनीवेज, तो यमुना देवी के किनारे हम बैठे हैं। यमुना देवी यमुनोत्री में प्रवेश करती है, जैसे वो ब्रह्मा लोक से वगैरह आते 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 पृथ्वी पर यमुनोत्री जान पे प्रवेश करती है। आप लोग मेरे को यमुनोत्री गए क्या? बहुत सुंदर यमुनोत्री स्थान है, बहुत ही सुंदर, हिमालय के अंदर चार धाम में आता है वो। और वहां से यमुना जी का जल इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना तेज गति में रहता है कि इसमें कोई स्नान नहीं कर सकता है, कोई हाथ लगा सकते हैं आप। स्नान करेंगे आप, कोशिश करेंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे आपको खुद को ही पता चलेगा नहीं, उसके पहले आप ऊपर पहुंच जाएंगे और आपका शरीर कहीं और पहुंच जाएगा। इतना बहुत तेज गति में और बर्फ से भी अधिक ठंडा रहता है वो पानी। मोमेंट यू गो इनसाइड नाउ यू बिकम सेंसेशनलेस। लेकिन हम जब बहुत युवा अवस्था में थे, कॉलेज में थे, तभी हम लोग गए थे, तो दो व्यक्ति ने हाथ पकड़ के हमको जल में छोड़ा था ऐसे, और हाथ पकड़ के रखा था और फिर हमको निकाल दिया था। उसके बाद में जब हम हमारा बदन पहुंचने गए ना, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं। तो नो सेंसेशन वॉज देर। इतना अद्भुत वहां पर का ठंड का, बर्फ का वातावरण है। और यमुनोत्री से जब वो आती है तो फिर वृंदावन में प्रवेश करती है, है ना, दिल्ली होकर फिर आगरा होकर वृंदावन में आती है। तो यमुना जी का महात्म्य ऐसा है कि यमुना जी जहां पर भी बहती है उसके सारे किनारे पवित्र क्षेत्र के रूप में माने गए हैं, और जो भी इसमें स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको कहा, आपको लगेगा बहुत अच्छा आइडिया है, पाप करते रहो, स्नान करते रहो, उसमें क्या है, वंस इन अ ईयर गो टेक बाथ एंड वॉश एवरीथिंग ऑफ। बट ऐसे लोगों को पाप मुक्ति नहीं होती, जो मुंबई की भाषा में कहते हैं ना चालूगिरी करते हैं उनको वहां पर, उन्हीं लोगों की पाप मुक्ति होती है जो वादा करते हैं कि दोबारा पाप नहीं करेंगे, उनके पहले पापों की मुक्ति हो जाती है। लेकिन यही यमुना देवी जब बाहर से यात्रा करते करते वृंदावन धाम में प्रवेश करती है तो उसका महात्म्य और बढ़ जाता है, वो पाप के साथ पुण्य को भी नष्ट कर देती है। तो आप बोलेंगे महात्म्य क्या है इसमें, ये तो बहुत नेगेटिव पॉइंट है, हम लोग तो पुण्य प्राप्त करने के लिए स्नान करते हैं नदी में, पाप नाश करने के लिए ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं चाहिए, पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए ना हमको। लेकिन मैं बताऊंगा ऐसे क्यों अच्छा है हमारे लिए। तो ये पुण्य को नष्ट करती है, और यहां तक उसका महात्म्य रुकता नहीं है, ये पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करके भक्ति देती है, ये उसका सही महात्म्य है। और ये केवल वृंदावन धाम में करती है, बाकी जहां वृंदावन छोड़ के बाहर जाती है फिर वो त्रिवेणी संगम वहां पर जो है वापस पाप नष्ट करने का शक्ति है उनके पास। वृंदावन धाम में दो और शक्तियां हैं, पुण्य और नष्ट करने का, और भक्ति दिलाने का शक्ति है। ऐसा कहते हैं कि यमुना जी में आप देखेंगे ना यमुना जी को, केवल देखेंगे प्रेम से, भाव से और प्रेम से देखेंगे, विद ग्रेट अप्रिशिएशन, इफ यू जस्ट बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ यमुना, तो भी आपको प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा महात्म्य है इसका। तो पुण्य भी नष्ट करना जरूरी क्यों है, इसका कारण ये है कि पाप करने से पाप का बुरा फल प्राप्त होता है ना, कष्ट प्राप्त होते हैं, पीड़ा प्राप्त होती है, और पुण्य करने से क्या प्राप्त होता है, यस, पुण्य क्यों करना चाहिए, पुण्य करने से सुख प्राप्त होता है ना, कभी कभी स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, वहां पर भी बहुत ज्यादा यहां से सुख होते हैं, वो प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन पाप और पुण्य में से भगवान की याद किस में आती है, पाप और पुण्य के फलों में से, अगर भोग रहे हैं आप, पुण्य के फल भोग रहे हैं और पाप के फल भोग रहे हैं, तो आपको भगवान की याद कभी आती है, हाँ, जब कष्ट होता है ना तो भगवान की याद आती है, जब बहुत पुण्य का फल हम भोगते रहते हैं तो इतना आनंद आता है कि भगवान की जरूरत क्या है, भगवान की याद नहीं आती है। और एक गड़बड़ है उसके अंदर, हवाई जहाज आकाश में कितनी देर उड़ता है, जब तक फ्यूल है, जब हमारे प्रभु जी शारजा से आए हैं, है ना, वो बड़ा जहाज में बैठ के आए, लेकिन वो भी एक जगह उतरता है, क्योंकि आकाश में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, वो आकाश में उड़ेगा तब तक उड़ेगा जब तक उसमें पेट्रोल रहेगा, जब पेट्रोल समाप्त हो जाएगा तो उसको पृथ्वी पर आना पड़ेगा और फिर पेट्रोल भरना पड़ेगा, फिर वो उड़ सकता है, फिर वो उतनी देर रहेगा जितना देर पेट्रोल रहेगा। अगर अमेरिका का फ्लाइट है तो 18 घंटे का पेट्रोल भरेगा तो 18 घंटा उड़ेगा स्ट्रेट फ्लाइट, वहां पर भी उसको उतरना पड़ेगा, परमानेंट वो हवाई जहाज आकाश में उड़ नहीं सकता है। उसी प्रकार से अगर पुण्य कर्म इकट्ठा करके आप लोग स्वर्ग में चले गए तो स्वर्ग में उतना ही देर रह सकते हैं जितने आपके पुण्य हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति, एक बार पुण्य क्षीण हो गए ना, मतलब जैसे आप सुख ने भोग लिया, जैसे होता है ना वो डिज्नीलैंड में होता है ना, यहाँ पर वो गया, कौन सा लैंड है वो, यहाँ पर बोरीवली के आसपास, हाँ, एसएल वर्ल्ड, वो आप एक टिकट खरीदते हैं, टिकट खरीदते ना, एक खाने के कूपन होते हैं, खेलने के होते हैं, पानी वाले इसके उसके, एक समझो 200,000 रुपए के कूपन लेके गए, तो जैसे आपने एक गेम खेला तो क्या हुआ, वो कूपन एक्सपायर हो गया, वैलिड काट के उसको फेंक देना पड़ता है। सब कूपन खत्म हो गए तो आप आगे खेल सकते हैं, उसके अंदर आपको बाहर आना पड़ेगा नए टिकट खरीदने के लिए। पापा और खेलना है तो बाहर जाके और टिकट खरीदने पड़ेंगे, फिर और खेल सकते हो। लेकिन जितना टिकट खरीदा है लाइफ लॉन्ग खेल सकते हो क्या उसके अंदर? नहीं, टिकट का जितना वैल्यू है उतना खेल सकते हो। उसी प्रकार से स्वर्ग लोक में पुण्यों का पूंजी लेकर जाएंगे तो उतना ही एंजॉय करेंगे जितना आपके पुण्य है। एक एक एंजॉय करेंगे तो पुण्य खत्म होते जाएंगे, एक दिन पुण्य जीरो हो जाएगा, क्षीणे पुण्य, पुण्य क्षीण होने के बाद में मृत्युलोके विशंती, दोबारा आपको पृथ्वी पर आना होगा। फिर क्या प्रॉब्लम होता है, समझो आप वन बेडरूम में रहते हो और आपकी इनकम अच्छी हो गई तो आप लोग दो बेडरूम में चले गए, फिर दो बेडरूम से तीन बेडरूम चले गए, हाँ, और फिर लॉस हो गया, शेयर मार्केट क्रैश हो गया, बिजनेस क्रैश हो गया, सब क्रैश हो गया, अभी तो वापस वन बेडरूम में आना पड़ेगा, ये स्थिति आ गई, तो आपको वन बेडरूम में आनंद आएगा? आप 25 साल रह चुके हो बचपन में पढ़ाई करते समय, अभी 10 साल में ही चेंज हो गया सब कुछ ही, लेकिन एक बार टू बेडरूम हॉल में जाके 10 साल रहने के बाद में अगर बुरा समय आ गया और आपको वन बेडरूम में आना पड़ेगा, कितना कष्ट होगा आपको। क्यों? कि आपको दो बेडरूम की आदत हो गई, अभी बेडरूम में आपने 25 साल गुजारे लेकिन अभी आपको वो सुख नहीं देता है। उसी प्रकार से पुण्य कमाने के बाद में आप स्वर्गलोक में जाएंगे, वहां पर स्वर्ग का मजा चखेंगे, फिर क्षणे पुण्य होकर वापस आएंगे तो यहां पर आपको बड़ा कष्ट होता है। यहां पर पहले आनंद मिलता था, वो भी नहीं मिलता है, क्योंकि वहां के लड्डू की याद आती है, वहां के सुख की याद आती है। जब चौल में रहते थे तो बाहर बाथरूम हुआ करता था, अभी अंदर स्नान करने की आदत लग गया तो चौल में वापस जाना पड़ेगा, तो हम बाहर जाकर वो सब नहीं कर सकते हैं जो पहले करते थे। तो स्वर्ग में जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां जाने से वहां की आदत बन जाती है, मनुष्य को सुखों की आदत जल्दी बन जाती है, कष्ट की आदत जल्दी नहीं बनती है। इसलिए हमें बहुत सारा बता सकते, समय कम है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में पूछा जाए कि पाप और पुण्य में अच्छा क्या है, पुण्य अच्छे हैं, लेकिन उसका उत्तर ये नहीं है, उसका उत्तर यह है कि पाप अच्छे हैं, क्योंकि पाप के फल जब हम भोगते हैं तो रो रो कर भगवान को पुकार सकते हैं, भगवान बचा लो, माफ करो मुझे आप, लेकिन जब पुण्य का सुख भोगते ना भगवान की याद नहीं आती है। तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी भगवान को याद कराता है उसको शुभ माना गया है, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भगवान की विस्मृति कराता है वो बुरा माना गया है। वॉट एवर इज अनफेवरेबल टू द मेमोरी ऑफ द लॉर्ड, टू द रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड, इट इज कॉल्ड एज अशुभ, इनऑस्पिशियस, एंड वॉट एवर हेल्प्स यू टू रिमेंबर द लॉर्ड इज कॉल्ड ऑस्पिशियस। अनुकूल्य संकल्पो प्रतिकूल्य वर्जनम, भगवान की भक्ति में जो अनुकूल होता है उनकी याद के लिए उसको स्वीकार करना चाहिए, और भगवान की भक्ति में जो उनको याद करने में प्रतिकूल होता है उसको वर्जनम, त्याग करना चाहिए। तो यमुना जी बहुत दयालु है। एक बार प्रभुपाद जी हमारे यमुना जी में स्नान कर रहे थे, तो बड़े बूढ़े थे वो, उनको कपड़ा निकालने में देर हो गई, तो उसमें जवान लड़के तुरंत कूद के अपना खेल खेलने लगे यमुना जी में, और प्रभुपाद जी कपड़े निकालते निकालते बोल रहे थे, यमुना जी टेक्स अवे पायस एक्टिविटीज एज वेल एज इम्पायस एक्टिविटीज, इम्पायस एक्टिविटीज एज वेल एज पायस एक्टिविटीज। तो कुछ लोग यमुना जी से भाग के वापस आ गए, अरे ये पुण्य भी ले जा रहे हैं, तो पुण्य तो रखना है अपने को, पाप निकाल देना है। फिर प्रभुपाद जी समझाया कि भौतिक दुनिया में पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन पाप अगर हो गए हैं तो उनके फल से हमको भगवान की याद आती है, रोते रोते याद आती है। तो यमुना जी का वो पाप पुण्य का हिसाब किताब भी इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यमुना जी हमको प्रेम भक्ति देती है भगवान की, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पाप की वजह से नरक में जाएंगे, पुण्य की वजह से स्वर्ग में जाएंगे, कहीं भी रखो भगवान आपके चरणों में रखो। भगवान के भक्त लोग ये प्रार्थना नहीं करते कि सुख मिले दुख नहीं मिले, आम जनता यही प्रार्थना करती है सुख मिले दुख नहीं मिले, दिन भर ये प्रयास करते हैं आज सुख मिलना चाहिए दुख नहीं मिलना चाहिए। होल अवर एफर्ट, होल अवर कॉन्शियसनेस, होल प्लानिंग इज व्हाट, सुख मिलना चाहिए दुख नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो आप हम लोग आप हो, एवरीबडी थिंकिंग दैट दुख नहीं मिलना चाहिए सुख मिलना चाहिए। लेकिन ये सब दुनिया का हिसाब किताब है, सुख और दुख मिलना ना मिलना, हमें तो भक्ति की आवश्यकता है। क्योंकि हमें इस जन्म मृत्यु के जंजाल से मुक्त होकर भगवान के पास जाना है। और यमुना जी वो फॉर्मूला हमको देती है, उनकी कृपा जो है वो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति करके भगवान के पास ले जाती है। क्या कहा था, यमराज का भय इसमें स्पर्श करने से नष्ट हो जाता है। और यमराज का भय क्या है, यमराज जी पकड़ पकड़ के लोग को ले जाते हैं जो पापी हैं और दंड देते हैं उनको, और दंड देने का पूरा हो गया तो वापस भेज देते दुनिया में शरीर में, और फिर जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा इसका चक्र चलते रहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, बार बार पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, बार बार जन्म लेना है माता के गर्भ से, फिर मर जाना है, फिर वापस माता के गर्भ में आना है, और ये चक्र जो है वो चलते रहता है। इस चक्र को छेद करने के लिए ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, और यमुना जी की कृपा से हम इस चक्र से मुक्त होकर भगवान के चरणों में चिरंतन आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। और यमुना जी का किनारा जो है इतना पवित्र है कि भगवान की अधिकतम लीलाएं जो है ना वो मंदिरों में नहीं हुई है, कुछ कुछ लीलाएं मंदिर की है, मंदिर निर्माण हो गए, भगवान के विग्रह प्रकट हो गए वगैरह वगैरह, लेकिन भगवान की लीलाओं में से अनंत लीलाएं जो है वो यमुना किनारे में हुई है। यमुना किनारे ही राधा रानी ने भगवान को मुरली सिखाई है गुरु बनकर, यमुना किनारे ही राधा रानी ने भगवान को नृत्य सिखाया है और नटराज बनाया है, उनको सर्वश्रेष्ठ नटराज बनाया है। यमुना किनारे ही भगवान ने केशी को मारा है, यमुना किनारे बंसीवट के तट पर रास रचाया है, क्या नहीं किया यमुना किनारे में, यमुना में नौका विहार किया है, यमुना में कमल खिलते हैं उसमें गोपियां खड़ी रहती हैं, और एक बड़ा कमल होता है उसमें भगवान विराजते हैं रत्न सिंहासन में। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर, से सुंदर सुंदर जल के लिए यानी जल क्रीड़ा भगवान यमुना के जल में करते हैं। यमुना के ही किनारे बैठकर गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था, उसके फल के स्वरूप भगवान ने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, उसके फल के स्वरूप भगवान ने रास में उनको प्रवेश दिया था। ऐसे यमुना जी के किनारे में अनंत कहानी है। वही विरह के समय पर भंवरा आया था यमुना किनारे और राधा रानी के चरणों पर गुंजन कर रहा था, और यमुना किनारे केशी घाट पर भगवान खड़े हैं और मुरली बजा रहे हैं, तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि किसी के मन में अगर इस दुनिया के भोगों को भोगने की अभी भी इच्छा है कि दुनिया में अभी भी आनंद है और मुझे वो भोगना है और मैं उसके लिए प्लानिंग कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं ताकि एक दिन वो आनंद में प्राप्त करूंगा जो बचा हुआ है, ऐसे किसी के मन में अगर ऐसी विचार है कि मैं और भी दुनिया को भोगना चाहता हूं, वो कहते हैं कृपा करके यमुना किनारे मत जाना, क्योंकि यमुना किनारे श्याम सुंदर जी त्रिभंग रूप में खड़े हैं और बंसुरी बजा रहे हैं, जो भी उनके त्रिभंग रूप में दर्शन करता है बंसी बजाते हुए उसके सारी दुनियादारी की इच्छाएं वो छीन लेता है। और बाय द वे आप ऑलरेडी यमुना किनारे आ चुके हो, ये बताने के पहले आप आ चुके हो, अभी आगे का जो भवितव्य है वो भगवान के हाथ में है कि आपके जीवन में क्या करना है, क्या चमत्कार करना है और कैसे आप लोगों को प्रेम और भक्ति प्रदान करके अपने धाम में लेके जाना है, इसकी योजना भगवान बनाएंगे। यमुना किनारे में आना बड़े भाग्य की बात है, सब लोग यमुना किनारे भाग्य नहीं आ सकते हैं, कोई पहुंच नहीं सकते हैं, जो भगवान की कृपा पात्र है वही यमुना किनारे आ सकते हैं, क्योंकि यमुना का जल जो है ना वो इतना पवित्र है कि जैसे ही भगवान ने जन्म लिया बीच रात में वसुदेव को बोला कि मुझे बकुल में ले जाओ, तो बीच रात में वो निकले बाहर और पहले कहां उतरे, यमुना जी में उतरे, और कहते हैं भगवान यमुना जी में गिर गए क्योंकि यमुना जी इतनी आतुर थी भगवान के चरणों को स्पर्श करने, भगवान टोकरी से बाहर उतर के गिर गए यमुना जी में, मतलब जन्म लेते ही पहले भगवान ने स्नान कहां किया, यमुना जी के जल में, तो यमुना जी का जल क्या बना, भगवान जी का चरणामृत बना। तो पहले भगवान ने अंग संग किसको दिया है, अपने अंग संग पहले यमुना जी को दिया है, पहले यमुना जी में प्रवेश करके यमुना जी को चरणामृत बना के फिर भगवान गोकुल चले गए, फिर यशोदा के आंचल में भगवान ने प्रवेश किया। इतना भाग्य है यमुना जी का, और यमुना जी का इतना भाग्य कि भगवान ने अनंत बार यमुना जी में लीला किया है, वो स्नान अनंत बार किया है ग्वाल वालों के साथ, गोपियों के साथ में स्नान जल केला किया है, यमुना जी में बोट लीला नौका विहार किया है, यमुना जी में छलांग लगाकर कालिया दमन किया है, कितनी लीलाएं हैं यमुना जी के अंदर। इतना यमुना जी का भाग्य देखकर गंगा जी उसको कहती है, बड़ी बहन है गंगा जी, वो कहती है तुम्हें भगवान का इतना संग प्राप्त हुआ है, मुझे कब मिलेगा भगवान से यातना करना, तो जमुना जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि मेरी बहन भी पूछ रही है कि उसे भी संग मिलेगा क्या। तो फिर भगवान ने एक लीला करके गंगा जी को ब्रज में प्रवेश दिया है और गिरिराज के बीच में मानसी गंगा के रूप में भगवान ने गंगा जी को स्नान दिया है। ये भी जमुना जी की कृपा है। फिर जमुना जी जो है ना, आप एक भजन सुन रहे थे, इसमें संस्कृत में ऐसे वर्णन आता है कि वही जमुना देवी सूर्यदेव की पुत्री बनकर अपने ही नदी के जल के अंदर तपस्या कर रही थी ताकि भगवान विष्णु मेरे पति बने, परम भगवान। तो जब अर्जुन को लेकर भगवान कृष्ण खांडव वन को जलाने गए, पता होगा आपको सोरिये कि दुर्योधन ने क्या किया, बहुत चापलूसी किया और एक खंडहर जैसा जगह होता ना, रेगिस्तान जैसा जगह दे दिया उनको, बोले यहां पर आपको हम देते हैं, आपका हिस्सा ये है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम उसका जंगल में मंगल कर देंगे। तो खांडव वन को अग्नि को भक्षण कराया जलाकर, और उसमें ऐसा महल खड़ा कर दिया भगवान ने इंद्रप्रस्थ। दुर्योधन भी ईर्ष्या करने लगा उसको देखकर। एनीवे, वो जब खांडव वन को जलाने के लिए अर्जुन को लेकर रथ में बैठकर जब भगवान गए और खांडव वन को जलाया, खांडव वन जल गया, अग्नि को बहुत सारा भोजन मिला, अग्नि तो संतुष्ट हो गया, अग्नि ने भगवान को चक्र दिया और अर्जुन को धनुष दिया। उस समय थककर भगवान बैठे हुए थे यमुना किनारे, तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाके मुझे थोड़ा जल ले आना, मुझे प्यास लग रही है। तो अर्जुन जब जमुना जी में पानी लेने गए तो यमुना देवी यमुना के बाहर आ गई और वहां पर विहार करने लगी। तो अर्जुन जी पूछते हैं कि आप कौन हो, लगते तो आप अविवाहित हो और ऐसा लग रहा है आपकी चाल से कि आप पति को ढूंढ रही हो, आपका परिचय क्या है बताओ। तो अर्जुन को यमुना देवी बताती है कि मैं यमुना हूं, सूर्य पुत्री हूं, और मेरे लिए जल के अंदर मेरे पिता ने कुटिया बनाकर दी है, मैं तपस्या कर रही हूं कि भगवान की मेरी पति के रूप में प्राप्ति हो। तो ये खबर भगवान को आके अर्जुन सुनाते हैं कि एक लड़की कह रही है कि मैं यमुना है और आपसे विवाह करना चाहती है। भगवान तुरंत उठते हैं, जलपान करते हैं, तुरंत जाके उसका हाथ स्वीकार करते हैं और तुरंत रथ में बिठाकर अर्जुन और भगवान कृष्ण उसको द्वारका लेके जाते हैं और उनका भगवान का विवाह होता है। इस तरह से भगवान की पंचम पत्नी भी है। वो भगवान की 16108 पत्नी है, उसमें से पंचम पत्नी जो है, 8 पटरानियों में जो एक पत्नी है उसका नाम यमुना देवी है। मतलब क्या हुआ, 16108 पत्नी में 8 पटरानियों में एक पटरानी भगवान की ब्रजवासी है, जो ब्रज में ही निवास करती है, भगवान की पत्नी होकर राधा रानी के संग में रहती है, बाकी सब लोग कृष्ण के संग में रहते हैं, रुक्मिणी के संग रहते हैं, लेकिन एक पत्नी जो है वो वृंदावन में निवास करती है, नदी के रूप में भगवान की लीलाओं में सहायता करती है। जमुना जी का अगाध महात्म्य है। ये शो अष्ट, हमने अभी यमुना जी का जो स्त्रोत्र गाया ना, उसमें जमुना जी का बहुत महत्व है। उसको अरविंद बंधु नंदिनी कहा गया है। अरविंद मतलब कौन, सूर्य। बंधु मतलब कौन, अरविंद बंधु, कमल का फूल। अरविंद बंधु नंदिनी, सूर्य की नंदिनी है वो। कमल के फूल को जो खिलाता है वो अरविंद है। अरविंद यानी कमल का फूल, सॉरी मैंने गलत बताया आपको, अरविंद का अर्थ है कमल, और कमल को खिलाने वाला कौन है, सूर्यदेव, और उसकी पुत्री कौन है, जमुना देवी। अरविंद बंधु नंदिनी, तो भजन में कहा गया, माम पुनातु सर्वदा अरविंद बंधु नंदिनी, मुझे आपका सेवक बना दीजिए, मुझ पर आपकी कृपा बरसाते रहिए। जब हम वृंदावन धाम में जाते हैं ना और प्रार्थना करते हैं, कभी वृंदावन धाम के आकर बंबई में, दिल्ली में, प्रदेश में जाकर प्रार्थना करते हैं, तो वृंदावन धाम के साथ में यमुना जी और गोवर्धन की भी प्रार्थना करते हैं, मन में यमुना देवी की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वृंदावन में प्रवेश करना है तो वृंदावन धाम की भूमि और यमुना देवी और गोवर्धन की कृपा के बिना वृंदावन में प्रवेश नहीं मिल सकता है। और ये यमुना देवी राधा रानी का बड़ी प्रिय है और राधा रानी भी अपने सखियों के साथ में यमुना जी में व्यवहार करती रहती हैं। तो हम यमुना जी में बैठे हैं, प्रार्थना कीजिए कि हमें आप सबको प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए, इसी जीवन में भगवान की कृपा हो जाए, उनके चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए, चरणों में लगन प्राप्त हो जाए, दुनियादारी में जितना मन लगा हुआ है उससे मन हटे और भगवान के चरणों में लगे, और ये जीवन संपन्न सफल सिद्ध होकर हम भगवान के धाम में प्रवेश पाएं। यही आपके लिए मैं शुभकामना करता हूँ। हरे कृष्णा, श्री यमुना देवी की जय हो।